ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಕಾ ಜೊ ವಿಷಯ ಹೈ ವೋ ಹೈ ರಾಜಯೋಗ ಕೆ ದ್ವಾರ ಮುಕ್ತಿ ಔರ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಔರ್ ವೋ ಭಿ ಇಸಿ ಜನ್ಮ ಮೇ. ತೊ ಕುಚ್ ಬಾತೆ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಸನ್ಮುಖ ರಖೂಂಗಾ. ಮೇ ಬಾಬಾ ಕಾ 67 ಮೇ ಬನಾ ಥಾ, ದೂರ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ರಹತಾ ಥಾ. ಔರ್ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇರೆ ಟೀಚರ್ ರಹೆ ಹೈ ಧ್ಯಾನಿ ದಾದಿ ಔರ್ ರಾಧೆ ಬಹನ್, ಅಂಬಾಲಾ ಕೆಂಟ್ ಮೇ ಸಿಂಧಿ ದಾದಿಯಾ ಥಿ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಜೋ ಬಾಬಾ ಕಿ ಧ್ಯಾನಿ ದಾದಿ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಜಾನೆ ಜಾತೆ. ಔರ್ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮಧುಬನ್ ಸೆ ದೂರ್ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಭಿ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಕಿ ಜೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಹೆಂಗೆ ವೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಭವ ಹೋತಿ ಥಿ ದೂರ್ ರಹತೆ ಹುವೆ ಭಿ. ಯೇ ಮೈ ಇಸ್ಲಿ ಕಹ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿ ಹಮ್ ಭಿ ಬಚ್ಚೆ ಅಭಿ ಬಾಬಾ ಕಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ ಮೇ ದೂರ್ ಬೈಠೆ ಹುವೆ ಭಿ ಯಾ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಬೈಠೆ ಹುವೆ ಭಿ ದೂರ್ ಹಮ್ ಸಕಾಶ ದೇತೆ ಹೈ. ತೋ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ ಸಕಾಶ ಸೆ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕಿ ಯಾದ ಜಿನ್ಕೊ ಸಕಾಶ ದೇತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಯಾದ ಆತಿ ಹೋಗಿ. ಪರ್ ಮೇರಾ ಅನುಭವ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಜೈಸೆ ಬಾಬಾ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಮಿಲಾ ತೊ ಬಹುತ್ ದೂರ್ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಭಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಜೊ ಛವಿ ಥಿ ಮಾನಸ್ ಪಟಲ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ಸೆ ರಹತಿ ಥಿ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಮಜಾ ಆತಾ ಥಾ, ಆನಂದ ಆತಾ ಥಾ. ಔರ್ ಇಸಿ ತರಹ ಮಮ್ಮಾ ಕಿ ಭಿ ಸಿರ್ಫ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಉನ್ ದಿನೋ ಕೋರ್ಸ್ ನಹೀ ಹೋತಾ ಥಾ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಜೊ ಚಿತ್ರ ಹೈ ತೊ ದಾದಿಯೋ ನೆ ಹಮೇ ಸಮಜಾಯೆ, ಜೈಸೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಕಾ ಚಿತ್ರ ಹೈ, ಕಲವೃಕ್ಷ ಹೈ, ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಹೈ, ಔರ್ ಮೇನ್ ತೊ ಬಾಬಾ ಕಾ ಹೈ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಾ. ತೊ ಇತ್ನಿ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಬಹುತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಮುಜೆ ಬತಾಯಾ. ತೊ ಸುನ್ತೆ ಹುಯಿ ಐಸಾ ಲಗಾ ಕಿ ಬಹುತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹುಯಿ, ಜೈಸೆ ಕಿ ಯೇ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ನಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ಔರ್ ಇಸ್ಕೋ ಫಾಲೋ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ತೊ ಹಮ್ ಪಾಂಚ್ ಛೇ ದಿನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯೇ ಥೆ ಅಂಬಾಲಾ ಕೆಂಟ್ ಮೇ, ಫಿರ್ ವಾಪಸ್ ಅಪ್ನೆ ಗಾಂವ್ ಚಲೇ ಗಯೆ ಜಲಂಧರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇ. ಔರ್ ವಹಾಂ ಜಾಕರ್ ಕೆ ರಾತ್ ಕೋ ಭಿ ಬೈಠ ಕರ್ ಕೆ ಯೇ ಜ್ಞಾನ ಯಾದ ಆತಾ ಥಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ ಮೇ ಹಮ್ ಬೈಠತೆ ಥೆ. ರಾತ್ ಕೋ ಬೈಠತೆ ಥೆ ಯೋಗ ಮೇ ಔರ್ ಚಿಂತನ್ ಚಲತಾ ಥಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾ. ಯೇ ಮೇ ಇಸ್ಲಿ ಕಹ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿ ಅಗರ್ ಅಭಿ ಹಮೇ ಯೇ ಕೈ ಬಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತಿ ಕಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ ರಹತಿ ನಹೀ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇರಾ ಅನುಭವ ಯೇ ಥಾ ಕಿ ಜೋ ಬಾಬಾ ಕೆ ಪುರಾನೆ ಚಿತ್ರ ಹೈ, ಹಮನೆ ಮೇನ್ ಚಿತ್ರ ಹೈ, ಅಗರ್ ಹಮ್ ಇನ್ಕೋ ವಿಜುಲೈಜ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಚಿಂತನ್ ಕರ್ತೆ ಇನ್ಕಾ, ಇಸ್ಮೇ ಯಾದ ಸಮಾಯಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ಅಬ್ ಕರ್ಕೆ ದೇಖಿಯೇ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ ಬಹುತ್ ಸಹಜ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಜ್ಞಾನ ಹಮೇ ಬಾಬಾ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಮಿಲಾ ಹೈ. ಯಾದ ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ನಹೀ ಹೈ. ತೋ ರಾತ್ ಕೋ ಬೈಠೆ ಬೈಠೆ ಭಿ ಕಾಫಿ ಘಂಟೆ ಜೈಸೆ ಐಸೆ ಬೈಠೆ ರಹತೆ ಥೆ ಔರ್ ಘರ್ ಮೇ ಲೌಕಿಕ ವಾಲೆ ಚೋರಿ ಸೆ ಛುಪ್ ಕೆ ದೇಖ್ತೆ ಥೆ ಇಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ. ಔರ್ ದಿನ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಥಾ, ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಮಾ ಚಲಿ ಗಯಿ ಥಿ ತೋ ಖಾನಾ ಬನಾತಾ ಥಾ ಔರ್ ಪಢ್ನೆ ಭಿ ಜಾತಾ ಥಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಥಕಾವಟ್ ನಹೀ ಹೋತಿ ಥಿ. ಔರ್ ಪಢ್ನೆ ಮೇ ಜಾತಾ ಥಾ 30-31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ್, ಘರ್ ಕಾ ಖಾನಾ ಬನಾ ಕರ್ಕೆ 30-31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ್ ಪಢ್ನೆ ಭಿ ಜಾನಾ ಔರ್ ವಾಣಿ ಭಿ ಸುನ್ ಕೆ ಆನಾ ಜಲಂಧರ್ ಮೇ, ಔರ್ ರಾತ್ ಕೋ ಯೋಗ ಮೇ ಬೈಠನಾ. ತೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೋಯಿ ಥಕಾವಟ್ ನಹೀ ಥಿ, ಮೇರಾ ಯೇ ಅನುಭವ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಲಗತಾ ಥಾ उसमें बहुत सुखद सुख फील होता था। तो लौकिक वाले बहुत हैरान होते थे कि ये रात को इस तरह से सोता नहीं है, दिन में भोजन भी बनाता है, क्योंकि भाई बड़ा था, बहन छोटी थी। और उसका फायदा ये मुझे मिला कि मैं खुद ही अपने हाथ से भोजन बनाता था और प्याज वगैरह नहीं डालता था, क्योंकि उन दिनों ये खाने का काफी, जैसे ब्रह्मा कुमारी के प्रति ये रहता था कि ये तो प्याज भी नहीं खाते हैं और किसी के हाथ का भी नहीं खाते हैं। तो जैसे ज्ञान मिला ड्रामा अनुसार ऐसी सिचुएशन आई कि भोजन भी मैं खुद बनाता था। और उसके बाद काफी परिस्थितियां आई फिर जैसे ज्ञान में चले, क्योंकि लौकिक पिताजी शहर के काउंसलर थे, दो बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो पूरे शहर में जानते थे उनको। तो जैसे उनको पता चला कि इनका बेटा जो है ब्रह्मा कुमारी के पास जाना शुरू हुआ है, तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा जैसे वार्तालाप शुरू हो गया, कहा सुनी शुरू हो गई, वो अपनी अपनी बातें कहें, हम अपनी बात कहते थे। मैं छोटा था, 17 साल की उम्र थी, और पहले इतना बोलता नहीं था, जैसे ज्ञान मिला आवाज खुल गई जैसे, और छोटा मुंह बड़ी बात ही कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मुझे खुद हैरानी होती थी उस चित्रों के अंदर क्या था जो उनको भी मालूम नहीं था और उनको अच्छी भी लगती थी, फिर भी वो कहते थे कि वहां नहीं जाना। बहुत तरह की भ्रांतियां थी आश्रम के प्रति, बहनों के बारे में, तो हम उनसे उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे, तो मुझे और भी अच्छा लगा, ज्ञान सुनाने को मिला मुझे और बाबा का ज्ञान सुनाने को मिला। जैसे उस समय ज्ञान इन तीन चार चित्रों में ऐसे लगा मुझे कि जैसे मेरे कपाट खुल गए, और उन लोगों को लगता था कि जैसे किसी को प्रकाश हो जाता है ना, दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि इसको कुछ मिल गया है जैसे, तो सचमुच ऐसे बुद्धि चलती थी और मैं बातचीत करता था। खैर उनका अपना एक अपने प्रिंसिपल्स थे, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में कोई राधा स्वामी था, कोई निरंकारी था, कोई सनातन धर्म का था, तो सब भी नहीं अपोज करते थे उस समय। खैर ये बातें थोड़ा अलग है, मैं जो आपको अभी आज विशेष सुनाना चाहता हूं, जो मुझे अट्रैक्शन हुई बाबा की और मम्मा की, विशेषकर मम्मा का मास अभी निकला, अभी दीदी का चल रहा है। मम्मा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी हमारे यज्ञ के, और उस समय दादियां हमारे जो बाबा के मुरभी बच्चे हैं वो जगह जगह पर डिफरेंट जगह पर सेंटर्स चलाते थे, कोई पटना था, कोई बांकीपुर, कोई मिर्जापुर, कोई बॉम्बे, कोई लखनऊ, कोई अमृतसर, सभी दादियां। तो आप सोच सकते हैं कि मम्मा की उस समय क्या प्रशासन, कैसा प्रशासन रहा होगा। ये एक बहुत, मैं समझता हूं कि हम भाई बहनों के लिए सर्च का भी, रिसर्च का विषय होना चाहिए। सचमुच आप अगर इस चीज की गहराई में जाएंगे, क्योंकि उसी व्यवस्था की बात है आज भी, वो प्रॉब्लम है सब जगह, पूरी दुनिया में है, हमारे मन के अंदर भी वही व्यवस्था की बात है, हमारे समाज के अंदर, हम जहां भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं वहां भी व्यवस्था की बात है सारी। तो मम्मा की व्यवस्था कैसी होगी उस समय, ये आप लोगों को विषय एक नया लग रहा होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मम्मा उस समय पत्र लिखती थी सब जगह, सब दादियों को, वो भी कहीं भी हमारे पब्लिकेशंस में नहीं है। और मम्मा गुरमुखी जानती थी, लिपि उनकी गुरमुखी थी, हिंदी लिखते नहीं थे, गुरमुखी लिखते थे, और हिंदी ट्रांसलेट होके फिर दादियों के पास जाती थी, और कुछ दादियां भी जानती थी, क्योंकि सभी जो सिंधी हैं मोस्टली वो जपी साहब को बहुत अच्छी तरह से उनको कंठस्थ रहता था और गाते थे, वो जपी साहब का सिमरन करते थे गुरुद्वारे आदि में जाना, सभी सिंधी मोस्टली। तो कुछ दादियां जानती भी होंगी कुछ को ट्रांसलेट होके, तो बाब जैसे मम्मा गई है, बाबा गए हैं, तो वो पत्र वापस फिर यज्ञ में आ गए। तो उन पत्रों को ट्रांसलेट करने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। तो उन पत्रों में मैंने देखा व्यवस्था मम्मा की। सच में कहता हूं कि अगर हम कहते हैं हमें बाबा मम्मा को फॉलो करना है, तो क्या चीज फॉलो करनी है? सिर्फ शब्द नहीं है फॉलो करना, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, दृष्टि कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से हम बात करते हैं कैसे करनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरह गहराई से मम्मा के पत्र को पढ़ा है और बार बार सोचा, उस पर मंथन किया है। मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। व्यवस्था में बहुत सारी बातें दूसरी भी मम्मा लिखती थी उनको, सेंटर के प्रति, जिज्ञासुओं के प्रति, वो बातें अलग हैं। बहुत छोटा पत्र होता था और लाल पेंसिल से लिखते थे, बाबा भी लाल पेंसिल से लिखते थे। तो जब भी मम्मा एड्रेस करती थी, आप सोचना इस बात को बहुत गहराई से, हम जैसे किसी को भी एड्रेस करते हैं, मिलते जुलते हैं या पत्र भी लिखते हैं, वैसा नहीं था। मम्मा हमेशा लिखती थी प्रभु लाडली गोप गोपियां। उनकी वृत्ति दृष्टि देखो कैसी है। मैंने कोई भी पत्र ऐसा नहीं देखा जिसमें मम्मा ने किसी को भाई या बहनों के रूप में उस तरह से लिखा है। मतलब उनकी वृत्ति में हमेशा रहता था कि हम बाबा के यज्ञ में, ईश्वर के यज्ञ में, इस सुहावने समय पर हम सब गोप गोपियां हैं। और सचमुच गोप गोपियां अगर मम्मा कहती थी, तो जो पढ़ता होगा उसके मन में भी क्या प्रश्न चलता होगा, संकल्प कि हम बाबा के गोप गोपियां हैं। जो कर्म इंद्रिय जीत होते हैं उनको गोप गोपियां कहा जाता है। फिर मम्मा ऐसे भी एड्रेस करती थी, बाबा के वारसो या होवनहार वारसो, भाई बहनों नहीं। तो जो पत्र पढ़ता होगा उस समय, उसका नशा कितना चढ़ता होगा। तो सचमुच वो पत्र पढ़ के ही मुझे इतना नशा रहता था कि गोप जैसे मम्मा सभी दादियों को, मतलब इतनी सम्मान पूर्वक मम्मा लिखती थी सबको। फिर पत्रों में क्या होता होगा व्यवस्था के लिए, कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ डायरेक्शंस होती होंगी। तो मम्मा की क्या उनका एक तरीका कहें, विधि कहें, इतनी श्रेष्ठ विधि कहें, पूरा पत्र मम्मा जिसको भी पत्र लिखती थी उसमें उसकी महिमा होती थी बहुत अच्छी तरह से। और सिर्फ एक बात होती थी जिसमें कोई कमी की बात होती थी, उसका सिर्फ हिंट देते थे। देखो जो विश्व महारानी बनने वाली है मम्मा है, सब दादियां भी उनको जानती थी, तो वो भी इतने सम्मान पूर्वक उन्होंने एड्रेस करके फिर पूरी महिमा करते थे। फिर एक कमी, और आप समझ सकते हैं कि जो पत्र पढ़ता होगा भी, मम्मा ने इतनी हमारी महिमा की, हमारे अंदर ये शक्तियां हैं ना, और छोटी सी कमी वो तो बहुत छोटी लगेगी, और कैसे भाग जाती होगी कमी वो। आप उस चीज को कंपेयर करें अभी से, हम किसी से मिलते हैं कोई बड़ा भी या छोटा भी एक दूसरे से मिलते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो सीधा ही उसको बोले, मैं आपने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, उसकी कोई महिमा नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। अच्छी तरह से उसको जैसे सम्मान से नीचे उतारेंगे, और मम्मा सम्मान में ले जा करके फिर छोटी सी बात कहते थे कि ये बात जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं ऐसा नहीं कि लिखते थे, पीयू को अच्छी नहीं लगी। आप समझ सकते होंगे अगर मम्मा ऐसा लिखती है तो वो कमी कहां भाग जाती होगी, मेरा ख्याल मुश्किल से कभी नहीं आती होगी उसके पास। तो क्या यही विधि, हम इतनी श्रेष्ठ विधि, हम पहले अपने भाई बहन ने, अपने भाई बहन है ना, ये भी एक देखो नशा है हमें होना चाहिए ईश्वरी परिवार में, कि हम सब गोप गोपी हैं बाबा के, गोपी वल्लभ की गोप गोपी हैं। पहले तो स्थिति में हम चले जाएंगे, फिर कमी तो नजर आएगी नहीं, भूले चुके अगर आ भी गई, अगर किसी को कहेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, निकल जाएगी, भाग जाएगी। और यही प्रॉब्लम, अगर अभी हम किसी को किस तरह से हम बात करते हैं, व्यवहार की बात है ये सारे, तो वो कमी जाती नहीं है और ही डबल हो जाती है। कई बार आप किसी को आज बताएंगे ना कि आपने ऐसा किया वैसा किया, कुछ डायरेक्शंस देंगे, तो पहले सम्मान में नहीं रहेंगे, अभिमान में आ जाएंगे, दूसरा भी अभिमान में आ जाएगा, तो वहां क्या होता है, टकराव होता है। तो हमारा जो विषय था आज का, राजयोग से मुक्ति और जीवन मुक्ति, आप इसी बात को लेकर के, मम्मा की इसी बात को लेकर के आप फॉलो कर सकते हैं, ये फॉलो करने वाली बात है। अगर नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में वो सारी यही है, मुश्किल से एक दो को, अगर किसी में विशेषता नहीं भी है, पहले तो बात ही बाबा यही कहता है कि मेरा लास्ट बच्चा भी उसमें भी बहुत विशेषता है। अगर बाबा कहते हैं तो जरूर है ना, तो ये भी एक निश्चय की बात है अपने परिवार के अंदर। तो हमें ऐसी सोच लेना चाहिए कि जब भी किसी की कमी को हम निकालना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, ध्यान उसका उस तरफ खिंचवाना चाहते हैं, तो उसकी पहले प्रेस कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि बाबा का बच्चा वो बना है तो जरूर उसमें कोई ना कोई विशेषता है। तो ये असली सर्विस, ये देखो मम्मा की ये सबसे पहली विधि। दूसरा, मम्मा जब भी पत्र लिखती थी उसमें एक महिमा भी कैसी होती थी। मैंने बहुत पत्रों में देखा मम्मा के, पहले एड्रेस करके, जैसे मैंने बोला आपको कि प्रभु लाडले, नाम लेकर के सवित्री, या उस समय कुमार का, या बहुत नाम आप सब जानते हैं दादियों के, वो नाम होते थे। आप अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते होंगे शुरुआत, माया तो आती रहेगी, ये मम्मा के शब्द, ये समस्याएं तो आएंगी आएंगी, परंतु उससे पहले होगा कि आप इस सुहावने संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते होंगे, परफेक्शन बिल्कुल पूरी ऊंचाई पर, मतलब ये छोटा मोटा ज्ञान तो है नहीं, बाबा हमें मिला है संपूर्ण वर्षा देने के लिए। हम नंबरवार क्यों हो जाते हैं, आप इसी में देखिए आप कि बाबा जैसे, मम्मा जैसे पत्र लिखती थी उसमें यही होता था, आप संपूर्ण सुख में जीवन व्यतीत करते होंगे। एक एक्सपेक्टेशन मम्मा को रहती थी कि ऐसा करते होंगे। तो मैंने ये देखा है कि ये भी मम्मा ऐसा क्यों लिखती थी कि उसका उत्तर आना चाहिए उसका, आप समझे इसी गहराई को, क्या आप ऐसा करते होंगे। फिर आगे मम्मा लिखती थी कि ये राय पसंद है, डायरेक्शन नहीं है, ये राय आपको पसंद है। कौन सी राय? कि हम बाबा के बच्चे बने हैं कि हमें अति इंद्रिय सुख की फीलिंग, उसकी अनुभूति होनी चाहिए हर हालत में, क्योंकि ईश्वर मिला हमें। फिर हम नीचे आप भले अपने पुरुषार्थ अनुसार हम लोग आते हैं, पर उस समय देखो बाबा के जितने मुरबी बच्चे हैं सबको मम्मा ने कैसे एड्रेस करते थे, कितने सम्मान पूर्वक। तो ये फॉलो करने वाली बात है और इस पर चिंतन भी हमें करना चाहिए। अति इंद्रिय सुख की बात है, हम बहुत ये कैसा समझते, बहुत ऊंची मंजिल है, और मामा ऊपर से शुरू करती थी पहले। इसी संदर्भ में मैं कुछ बात और सुनाता हूं। हमने त्रिलोक का चित्र देखा है, उसमें परम धाम क्रिम्सन कलर का दिखाया हुआ है ना, निश्चय की बात है। और उस सुनहरी लाल रंग में बाबा रहते हैं, तो आपने मुरलियों में बाबा के महावाक्य सुने होंगे कि बच्चे मुझे याद करो और घर में याद करो, या मुझे याद करो या घर को याद करो। और वो जो घर है, क्या उसकी पहचान हमें हमेशा रहती है हमारे मन के अंदर, मानस पटल पर उसकी याद? उसमें एक विशेषता है जो हमारे निश्चय को प्रदर्शित करती है, वो ये है कि मनसा वाचा कर्मना वहां कोई रोल नहीं होता उसका, मन वाणी कर्म क्रिम्सन कलर में उसका कोई रोल नहीं होता। पर हम जब याद करते हैं तो क्या करते हैं, मन में संकल्प भी चलते हैं, बाबा के सामने भी बैठे हैं, कर्म भी हमारे सामने है, उसका आभास होता रहता है, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उसको याद करते उसको याद करते बाबा के आगे। तो आपको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो मैंने देखा है कि मम्मा की वो जो बात है ना अति इंद्रिय सुख की, जब भी हम बाबा को याद करें तो पहली निशानी या पहली अनुभूति हमें ये होनी चाहिए कि हम बाबा की याद में बैठे हैं तो बाबा का फुल वर्षा कहेंगे, हम बाबा के सामने बैठे हैं तो हमें हर हालत में उस सुख की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। मम्मा ये भी पत्रों में लिखती थी जिसको भी, दादियों को, आप जरूर ईश्वरी मौज में होंगे, मौज आनंद अति इंद्रिय सुख। अगर लाइफ में अभी यही नहीं है, मतलब इसी को मैं समझता हूं, अगर अति इंद्रिय सुख है तो जीवन मुक्ति है इसी जन्म में, वो फुल वर्षा है हमारा 100%। और वो क्यों नहीं है कि कुछ बाधाएं हमारे सामने आती हैं, उससे मुक्ति नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी याद संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। मम्मा ने कई पत्रों में ड्रामा को टच किया है, आप सोचना इस गहराई को। अभी हम कुछ भी हो जाता है तो कहते हैं ये ड्रामा था, हमारी किस्मत में हमारे जीवन में यही ड्रामा था, कुछ नुकसान हो जाता है, मोस्टली ऐसे यूज करते हैं ड्रामा को, जब नुकसान हो जाता है तो हम ड्रामा को यूज करते हैं, ड्रामा बाबी, पर ऐसा नहीं है। ड्रामा बाबा हमें मिला ये ड्रामा है, और बाबा हमें 100% वर्षा देने आया है संपूर्ण सुख का। प्रजा योग नहीं है ये, राजा राजयोग है, राजयोग है ये, राजाओं का राजा बनाते हैं बाबा, हमेशा मुरली में ऐसे कहते। तो हम ड्रामा को कैसे यूज करें, कि क्या जब कभी भी हम बैठते हैं योग में, मुरली के समय है या अमृत वेला है या नुमा शाम योग है या शाम को योग है, तो क्या उस समय ड्रामा को यूज कर सकते हैं? हम पहले सोचे हम कि मेरा ड्रामा ही ऐसा है कि एक घंटा बैठूंगा, मुझे किसी की ताकत नहीं है मुझे हिला सके बाबा के सामने से, ये संकल्प करना सिर्फ, तो क्या ये ड्रामा में निश्चय नहीं है? मैं समझता हूं उस समय हम जब ज्ञान में चले थे ये एक मर्यादा समझी जाती थी कि बाबा की याद में बैठेंगे तो बैठे हैं, फिर कोई हिला नहीं सकता कोई। उसका कारण था जो मैंने आपको पहले बताया कि क्रिम्सन कलर जो बाब हमारे घर का जो कलर है वो वहां मन वाणी और कर्म का कोई रोल नहीं है। ये निश्चय होना चाहिए कि वहां रोल नहीं है, हम वहां बैठे हैं तो वहां कैसे संकल्प आ गया, कैसे आ गया? तो हमारे निश्चय की कमी है, हमारे समझने की कमी है। अभी बाबा जिसको आपने अव्यक्त बाप दादा की कमेंट्रीज सब रिपीट भी करते होंगे, बच्चे एक सेकंड में शांति धाम में चले जाओ, एक सेकंड में अपनी आत्मा को वहां टिका लो, स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, स्वीट साइलेंस। तो स्वीट साइलेंस के पीछे नेक्स्ट स्टेप जो है वो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति है। आप जितना स्वीट साइलेंस में बैठेंगे, आप अनुभव करके देखिए, 5-10 मिनट भी अगर आप बैठेंगे तो अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपकी एक एक कर्म इंद्री, जैसे मैं कहूंगा, उसमें आपको एक जैसे ठंडक सी महसूस होगी ना, असली शांति की फीलिंग आएगी। ये शांति नहीं कि कोई हमें बुलाए नहीं, कुछ नहीं, मन में कितने भी संकल्प चलते रहे, और मनोबल फील होगा। मनोबल उसको कहते हैं कि आपका संकल्प आज चाहे कि बाबा की याद में मुझे 15 मिनट बैठना है तो मैं बैठ सकता हूं, इसको मनोबल कहते हैं। हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि मनोबल नहीं है हमारे पास, ताकत नहीं जिसको कहेंगे, हिम्मत नहीं है। और वो कैसे आएगी? वो निश्चय से ही है कि जो बाबा ने अगर कहा है कि वहां मनसा वाचा कर्मणा का कोई रोल नहीं है तो हमें विश्वास होना चाहिए ना। हमारे मन एक्सेप्ट करते हैं परंतु हिम्मत नहीं है, वहीं संकल्प करते हैं सारे जा करके। आप वो स्वीट साइलेंस का अनुभव करने के बाद फिर सोचें कुछ भी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स उसका हल मिल जाएगा आपको, आपके आसपास नहीं रहेंगी वो प्रॉब्लम। तो मैंने देखा है कि ये राजयोग कितनी बढ़िया चीज है। कोई भी धर्म संकट है, कर्म संकट है, कोई भी व्याधि है, किसी तरह भी की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगी और होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए हम भाई बहनों के पास। उन दिनों मैं छोटा था, जैसे मैंने बताया, उसके बाद मेरी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस लगी, वो भी जैसे मैंने संकल्प किया और वहीं लग गई सर्विस। काफी मतलब समय चाहिए उसके लिए, कभी समय मिले तो बताएंगे। उन दिनों पंजाब में टेररिज्म था और मेरी पोस्टिंग स्पीकर विधानसभा के साथ थी, पंजाब विधानसभा में। तो हम टूर पर जाते थे तो मोस्टली वो मुझे ले जाते थे क्योंकि टेररिज्म था, बाहर तो गोलियां चलती थी, बहुत लोग मारे गए ना, थोड़ा बहुत हिंदू सिख का प्रश्न पैदा हुआ। हमारे मन में कभी नहीं हुआ कि हम उस दृष्टि से उनको देखते ही नहीं थे और बहुत आपस में प्यार रहता था। तो मैं 2-3 बातें आपको थोड़ा समय अनुसार बताता हूं। तो टेररिज्म के समय क्या होता था कि बहुत अटैक्स होते थे। एक बार हम रात के समय 8 बजे जैसे टूर से चंडीगढ़ आ रहे थे तो आगे पायलट होती है जैसे मिनिस्टर के आगे, फिर पीछे उसकी गाड़ी होती है, पीछे उसकी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है। तो उस दिन उनके मिसेस साथ में थे, वो बैठे थे तो हम पीछे की गाड़ी में बैठे थे। तो एक कर्ब आती है तो वहां एक ट्रैक्टर ट्रेलर होता है जिसको काफी पहियों वाली गाड़ी जिसको आप समझ सकते हैं, काफी बड़ी गाड़ी होती है, वो उन्होंने स्टेशन किया था कि जैसे ये आएंगी तो हम हेड ऑन कोलिजन कर देंगे। हमें नहीं, उनके लिए था, वो मिनिस्टर्स वगैरह के पीछे थे उस समय। तो ड्रामा अनुसार पायलट और उनकी गाड़ी निकल गई, हमारी गाड़ी हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो मुझे याद है कि हम जैसे बीच में बैठे थे, पीछे की बाबा की याद में बैठे थे, हमें ये मौका मिलता था बाबा को याद करने का। जितना लंबा सफर हम बहुत खुशी खुशी बैठते थे, जैसा समय आया उसका हमने बहुत भरपूर फायदा जैसे खुशी खुशी उठाया। वी टूर पर हैं तो हम ठीक है, हमें बाबा को याद करने के लिए समय मिल गया। और जैसे कोलिजन हुआ तो हम जैसे अनकॉन्शियस हो गए, तो हमें जैसे बाद में बताया गया कि वो गाड़ी को उन्होंने, वो दोनों गाड़ियां आगे निकल गई तो उनको मतलब तोड़ करके ड्राइवर और हेड कांस्टेबल आगे बैठे थे, दे डाइड ऑन द स्पॉट, उनकी मृत्यु हो गई। तो हम तीनों जैसे हमारे काफी चोटें आई। तो ये 44 स्टिचेस है मेरे इधर लगे हुए। तो हमें जैसे ही रात को पीजीआई 12 बजे लेके गए, 12 बजे का, हमने जैसे ही आंख खोली तो सामने बहनें खड़ी थी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने पूछा आपको कैसे पता चला, तो स्टाफ ने बताया कि आप जैसे आप तो अनकॉन्शियस थे पर ये बोलते जा रहे थे कि मेरे आश्रम का नंबर ये है, मेरी बहनों को बुला दो, मैं रिपीट करता जा रहा था। तो मुझे ये सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा, अंत मते सो गति वाली बात कि हम बाबा की याद में बैठे हैं। मुझे एक्सीडेंट का कोई आज तक भी रिंचिक मात्र भी अफसोस नहीं, इतनी चोट लगी, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पर अंत मत सुगत बहनों को देख करके मुझे और ही जैसे मेरे अंदर ताकत आ गई, खुशी हुई। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मैं राजयोग की बात सुना तो मतलब कितना, और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो काफी और भी टेबल्स होते हैं, एक्सीडेंट केसेस होते हैं, तो वो काफी क्राई कर रहे थे, तो हम शांति से बैठे थे और वो जो सर्जन था वो उनको कह रहा था कि देखो इसके बहुत चोट लगी है, ये शांति में बैठा है और आप लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हो ना, चोट लगती है नेचर चिल्लाते ही है व्यक्ति। और मैं उस समय अंदर से ये पुरुषार्थ कर रहा था कि मेरी आत्मा को चोट नहीं लगी, मेरे शरीर को चोट लगी है और बहुत गहराई से। आपका भी ये अनुभव होगा कि जब कभी भी आपको चोट लगे, अगर आप पुरुषार्थ करेंगे आत्मिक स्मृति में जाने का, तो बहुत डीपली चले जाएंगे आप, क्योंकि चोट में दर्द होता है ना, दर्द में व्यक्ति फिर थोड़ा अपने आप को दूर ले जाना चाहता है, दर्द नहीं होना चाहिए। तो मैं उतनी जोर से अपनी आत्मा की स्थिति में अंदर ही, जैसे चैतन्य आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, सच जानिए बिल्कुल शांति से बैठा था, कोई दुख दर्द नहीं था, हालांकि इतनी स्टिचेस लगे हुए थे। तो ये किसकी महिमा, मतलब राजयोग की, बाबा की याद की कहेंगे, बाबा के ज्ञान की कहेंगे। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि ये बहुत इजी राजयोग है, परंतु बहुत सबसे बढ़िया तरीका है ये, जीवन जीने की कला है ये, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, इसका महत्व हमारे अंदर कम होता है। हम जब भी कभी कभी भी तकलीफ में हुए, हमारे पास ये अनुभव होना चाहिए, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। मैं एक और अनुभव सुनाता हूं ऐसे, जैसे एक बार मुझे इनर ईयर में प्रॉब्लम होगी तो वर्टाइगो जिसको बोलते हैं, चक्कर आने लगे, स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी आते हैं, या अंदर इनर ईयर में प्रॉब्लम हो जाए तो भी चक्कर आते हैं, तो इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में। तो मुझे न्यूरो फिजिशियन के पास अहमदाबाद ले गए, यही मधुबन की बात है, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाई भी दी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये कब तक ये इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, कहते 2-3 मास लग सकते हैं, 3 मास लग सकते हैं। और उसने ये क्या दवाई दी मुझे कि जब भी चक्कर आए आप इसको गहराई से सुनना, सोचना और अपने सामने एक निशान लगा लो, आप जहां बैठते हो ऑफिस में या सोते समय चक्कर आए तो अपना ध्यान एकाग्र उस बिंदु की तरफ करना। तो मुझे इतनी खुशी हुई सुन करके कि मैंने कहा ये बचपन से तो मैं यही कर रहा हूं, अंदर से बाबा की तरफ, बाबा भी बिंदु स्वरूप है तो मेरी एकाग्रता उसमें है। फिर इसके बाद पूछा कितना समय लगे, कहते 3 मास। और आप सच जानिए 1 मास में वो इम्बैलेंस खत्म हो गया था। किसकी वजह से? इस अंदर की एकाग्रता से। उसने तो कहा कि जब चक्कर आए तब बिंदु को देखना, एकाग्र होना, तो आपको चक्कर खत्म हो जाएगा। तो हम तो जदा कदा अभ्यास करते ही रहते हैं सभी भाई बहन। तो सचमुच अगर हमें कोई दवाई भी मिलती है तो वो भी जैसे सोने पर सुहागा ना, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए। ये जो बाबा ने राजयोग सिखाया इसके अंदर और भी गहराई में जाएंगे, मैं सच कहता हूं। किसी तरह की परिस्थिति, दुख हो, कष्ट हो, कैसा भी संकट हो, आधा हो जाना चाहिए उसी समय। और होता है, हमारा अनुभव तो ये कहता है, जो मैंने आपको, और भी बहुत सारे अनुभव हैं, अभी समय नहीं है, फिर कभी मिलेंगे तो सुनाएंगे। तो इस तरह से मैंने देखा कि लाइफ में कितना भी बड़ा संकट आए, जैसे मैंने सुनाया बचपन का, अगर मैं ज्ञान में नहीं होता और मेरी माँ चली गई होती तो कितना कष्ट होता, दुख दर्द होता, कितनी प्रॉब्लम्स होती। पर बाबा का साथ था, बाबा की याद थी, बाबा का ज्ञान था, कैसे दूसरे भाई बहनों से, लौकिक परिवार से, शहर वालों से हम वार्तालाप किया इतनी छोटी आयु में, कभी नहीं हो पाता। वो जैसे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है हमारे पास। फिर उसके बाद टेररिज्म में भी कैसे वो हमें साथ रखते रहे और हम खुशी खुशी उनके साथ जाते रहे, क्योंकि उनका कहना यही था कि ये तो बैचलर है हमारे परिवार, हम तो परिवार वाले हैं, मर जाएंगे तो कैसे गोली लगेगी। या उस समय ऐसे चल रहा था कुछ ना कुछ ना, बहुत लोग किलिंग्स बहुत हुई, पर हमें उन चीजों का नहीं इतना लगता था जितना हमें इस चीज की खुशी होती थी कि हमें जैसे ये बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हम टूर पर जाते हैं तो याद करने का भी समय मिलेगा और मजा आएगा, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं रखता था। ओम शांति, थैंक यू।